ईरान की सांस्कृतिक धरोहर।
श्रोताओं, ईरान की सांस्कृतिक धरोहर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज की कड़ी में हस्तकला उद्योग की एक विविधतापूर्ण व आकर्षक शाखा लकड़ी की हस्तकला के बारे में आपको बताएंगे। ऐसी कला जो ईरानी कलाकारों के रचनात्मक मन और प्रकृति के बीच आश्चर्यजनक लगाव का पता देती है। इन सभी हस्तकला उद्योगों का मूल पदार्थ लकड़ी ही है।
प्रकृति से मिलने वाले सबसे अच्छे और लाभदायक कच्चे पदार्थ में लकड़ी है, जिसे इंसान ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया और सभ्यता तथा हस्तकलाओं में प्रगति में इसका योगदान रहा। मानव जीवन के शुरू में लकड़ी घर, नाव और मूल उपकरण बनाने में इस्तेमाल होती थी। उसके बाद इंसानी जिंदगी के लिए लाभदायक चीज़ों के निर्माण में इस्तेमाल होने लगी और अंततः इसे पुराने समय से ही इमारत बनाने के लिए ज़रूरी मसालों का हिस्सा समझा जाने लगा।
इतिहास पूर्व में इंसान ने गुफाओं में जिंदगी गुजारना शुरू किया और लकड़ी को उसने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। स्विट्जरलैंड की झीलों, आल्प पर्वत श्रृंखला के एक क्षेत्र सावोवा, इटली सहित दूसरे क्षेत्रों में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे घरों के लकड़ी के खंभे मिले हैं जो पानी पर तैरते थे, जिन्हें आधुनिक युग में फ्लोटी हाउस कहा जाता है। ये घर पैलियोलिथिक, नियो पैलियोलिथिक और लोह युग के हैं, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में लकड़ी के घर और जरूरी उपकरण बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। ये अवशेष दर्शाते हैं कि प्राचीन काल का इंसान अपने शरण स्थल के लिए लकड़ी को सरल रूप में इस्तेमाल करता था। आपको शायद यह जानकर हैरत होगी कि आज भी अटलांटिक के तटवर्ती इलाकों और मालका में स्थानीय लोग फ्लोटिंग हाउस अर्थात पानी पर तैरने वाले घर बनाते हैं।
शताब्दियों तक लकड़ी मानव समाज में बिना अधिक बदलाव के विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल होती रही है। मानव सभ्यता के विकास में लकड़ी के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर इस हकीकत के दृष्टिगत कि लकड़ी जल परिवहन के लिए नाव के रूप में आवाजाही का एकमात्र साधन थी और लकड़ी की बनी नाव से इंसान ने जमीन के अज्ञात स्थानों का पता लगाया। लकड़ी ही इतिहास के विभिन्न दौर में इंसान की जान को बचाने का साधन बनी रही है।
15वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीनी साम्राज्य में लकड़ी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ काटने वालों के खिलाफ सजा के नियम बनाए गए थे। भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बौद्ध धर्मियों के उपासना स्थलों में विभिन्न प्रकार की लकड़ी की प्रतिमाएं रखी जाती थी, जो लकड़ी पर कलाकारी की सूक्ष्मता का पता देती थी। यूनान में भी लकड़ी के उद्योग बहुत ही प्रचलित थे और रूमी साम्राज्य में भी लकड़ी को उपकरण और सौंदर्य के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि प्राचीन रोमवासी पेड़ के तने में चित्र बनाने की अहमियत को समझते थे।
पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार ईरान के स्थानीय निवासी लगभग 4200 ईसा पूर्व में आर्याइयों के पलायन करने से पहले लकड़ी से घर बनाते थे। अलबत्ता कृषि के उपकरण बनाने में भी लकड़ी इस्तेमाल होती थी। हखा मनशी काल से लकड़ी के उपयोग की शैली अधिक स्पष्ट है, लेकिन इसका दस्तावेजी शक्ल में इतिहास मौजूद नहीं है। इसी प्रकार तख्ते जमशीद से मिलने वाले शिलालेख से महलों को सजाने में बेर की लकड़ी के इस्तेमाल का पता चलता है।
तख्ते जमशीद से मिले अवशेष और प्राचीन शायरी से पता चलता है कि देवदार, झाऊ और कुनार के पेड़ों से लोग आस्था रखते थे। हकाम निशी शासनकाल में जंग में इस्तेमाल होने वाले रथ और उपकरण लकड़ी के बनते थे और यूनानी इतिहासकार मौजूदा तुर्की में स्थित तत्कालीन लीडी देश की राजधानी सार्त पर साइरस की सफलता को दुश्मन के ठिकानों पर लकड़ी की बनी मीनारों से पता लगाकर रथ से हमले की देन मानते हैं। इसी प्रकार ब्लैक और भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों पर हकामनेशी शासनकाल के वर्चस्व का श्रेय भी लकड़ी की विशाल नौकाओं सहित यातायात के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण को देते हैं।
अशकानी शासनकाल के बारे में संकलित रूप में दस्तावेज नहीं है, किंतु सासानी शासनकाल के बारे में ये बात स्पष्ट है कि वे घर बनाने, शिकार, जंग के उपकरण, वाद्य यंत्र के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। उदाहरण स्वरूप, बहुत बड़े आकार का वाद्य यंत्र लकड़ी का होता था, जो सासानी शासनकाल का सबसे अच्छा साज समझा जाता था, और बरबत ही को तार, सितार, सारंगी और सेलो इत्यादि का जनक माना जाता है। ईरान में इस्लाम के आने के बाद लकड़ी की कलाओं और उद्योगों पर भी इस ईश्वरीय धर्म की शिक्षाओं का असर पड़ा और बेहतरीन कलात्मक वस्तुएं, दस्तावेजों, मिंबरों और मस्जिदों, मकबरों तथा पवित्र स्थलों की खिड़कियों की शक्ल में ये सामने आई।
किसी भी रूप का धारण करना, गर्मी और आवास के लिए उचित उष्मारोध, विविधतापूर्ण रंग और संरचना, पुनः इस्तेमाल करना, वे विशेषता हैं जो लकड़ी में पाई जाती है। किंतु प्राचीन समय से लकड़ी में एक कमी यह रही कि लकड़ी कीड़े मकोड़ों की जद से महफूज नहीं रहती, जैसे दीमक लगना। किंतु आज ऐसी चीजें बन गई है जो लकड़ी को दीमक जैसे कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखती है। लकड़ी की एक समस्या आग लगकर जलना भी है।
आज लकड़ी बहुत से काम में इस्तेमाल होती है। आज लकड़ी का उद्योग घर निर्माण, डेकोरेटिव आर्ट्स, सोफा सेट वगैरह बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है। अब तो लकड़ी की शक्ल के उत्पाद बाजार में मिल रहे हैं, जो प्लास्टिक और दूसरे रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। दूसरी ओर लकड़ी का प्रयोग इंसान की सेहत की नज़र से भी फायदेमंद है, क्योंकि लकड़ी प्राकृतिक तत्वों का ही भाग है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि लकड़ी का वातावरण प्रसारित आवाज को अपने अंदर जज्ब करने के बाद प्रतिबिंबित करती है। इस तरह आवाज गूंजती नहीं है और लहरों की लंबाई में अंतर को संतुलित करती है। हल्की व सूखी लकड़ियों पर जूते से चलते वक्त चीड़ की लकड़ी की तरह भारी आवाज निकलती है, बल्कि बलूत और अखरोट की लकड़ियां पर जूते से चलते वक्त धीमी आवाज निकलती है।
आज हमारी जिंदगी में लकड़ी, सोफा सेट, श्रृंगार की मेज़, कैबिनेट, प्रतिमा, गुलदान, यहाँ तक कि चमचे और कांटे भी लकड़ी के बनने लगे हैं। प्राचीन समय से लकड़ी की हस्तकलाकृतियाँ दुनिया के अधिकतर देशों में रोजगार का साधन रही हैं। ईरान में भी जंगलों और अच्छी लकड़ियों की भरमार से लकड़ी के हस्तकला उद्योग को बहुत रौनक मिली है।
यूं तो लकड़ी के हस्तकला उद्योग की शाखाएं बहुत हैं, किंतु मोटे तौर पर इन उद्योगों को इन भागों में बांटा जा सकता है। चौखट बनाने, बांस से बनने वाली चीजें जैसे टोकरी, चटाई की बुनाई, मोहर बनाने, वुड टर्निंग उद्योग इत्यादि। इसी प्रकार ईरान के प्राचीन वाद्य यंत्रों के निर्माण, चाइनीज नॉट, तक्षण कला, बढ़ई गिरी और लकड़ी पर चित्रकारी, ईरान में लकड़ी के हस्तकला उद्योग की अन्य शाखाएं हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, इजाजत दें।